विषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये आदेविका तु भर्गवद्वाचा जाति निपत्तभुवि दण्डवतोद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विते निजगणे गणनम् अङ्गुश्यामलिखताभिरभितो मन्दिकृतेन्द्रियवरम् जद्दञ्जाबुदरोऽपि समुदिदधतमपष्टम् वरश्चरस्या बृन्दारण्यनिवासिनम् हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ज्ञानेन्दामोदरम् भक्त्याविहीनापराधलक्ष्ये तृप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणम् प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणान् गुरवे कौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो वैराग्यदुगभक्तिरसंप्रयत्नै अपायन्मानं हेतुमन्दम् कृपां बुधिर्जातरदुःखदुःखी सनातनस्तम् प्रभुमास्तु श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः पदा मह्यम् ददाति सपदान्तिकम् यम् प्राव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यम् दैपायनो विरहकर्तर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानुते तवैवासी तवैवासी न जीवामि त्वया विना कुतुपि ज्ञाय राधेशमानुते मैंने एक वंदना में श्लोक पाठ किया सनातन गोस्वामी जी का प्रणाम इसमें बतला रहे हैं वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन सनातन गोस्वामी दया के समुद्र हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी सारी दया इनके हृदय में स्फूर्ति की थी। जितने भी चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाएं हैं उन्होंने अनुग्रह पूर्वक सनातन गोस्वामी के हृदय में सबको भर दिया, इसलिए सनातन गोस्वामी बड़े दयालु जैसे दयालु चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, जगत के जीवों पर विशेष करुणा करने के लिए जो तुच्छ जीव जो साधन भजन भी नहीं करते ऐसे बहुत रूप जीवों को सरल से सरल सहज से सहज सभी लोग इसको अंगीकार कर सकें, जिसमें पैसा खर्च न हो, जिसमें बुद्धि खर्च न हो, जिसमें दिमाग खर्च न हो, जिसमें कोई अड़चन न आए, सभी लोग सभी जाति के लोग स्त्रियां बूढ़े बालक पशु पक्षी तीन गुलमलता तक भी इसको ग्रहण कर सकें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही पधारे थे, उन्हीं राधा जी का भाव लेकर के और उनके अंग कांति भाव किस ले दिया, स्त्रियों में दया किस होती है, राधा जी दयालुता की सीमा है, इसलिए विशेष करके उनका हृदय दिया, उनकी भावना को दिया। कृष्ण की शिक्षा कृष्ण का आचरण हम नहीं ग्रहण कर सकते, कभी नहीं कर सकते, किंतु राधा जी का कृष्ण के प्रति जो आचरण और प्रेम और सेवा है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में कृष्ण ने राधा जी के भाव और शांति को ग्रहण करके प्रकट किया और सारी दया सारी शिक्षा सनातन गोस्वामी जी को वाराणसी में दी। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर आप तो दया के समान और मैं कहता हूं अंध हूं, आप तो ठीक है तो अपने को अंध कर रहे हैं, इन आंखों से ये अंदर की आत्मा और हमारे मन की भावना को आप लोग न देख सकते हैं, न मैं देख सकता हूँ। आप लोगों के अंदर में क्या बुराई और अच्छाई है आंख से नहीं दिखेगी। इसके आचरण से हो सकता है कि हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते। तो इन आंखों से आत्मा नहीं दिखती है, भगवान भी नहीं दिखते हैं, भाव भी नहीं दिखते, विशेष करके भक्ति का उस विषय में मैं अंधा हूं और अनभिक्षु। मैं आपकी दया भी नहीं चाहता, भगवान की दया, भक्तों की दया, संतों की दया लोग नहीं चाहते। वो अपने मनमौजी ढंग से उस दया को चाहते हैं जिससे उनका उपकार हो और न हो, अपने अपनी भावना से वो सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं आपकी दया को लेने में भी उत्सुक नहीं था, किंतु आप ऐसे दयालु हैं जो मैं नहीं चाहता था। जैसे छोटा बालक कोई चीज देने पर, दूध भी देने पर वो नहीं लेता है, रोता है, जबरदस्ती उसको देने पर धीरे धीरे उसको लेता है। एक बछड़ा है, उसके पेट में कीड़ा पड़ गया और उसको नीम के पत्ते पीस कर दिए जाए रस तो वो ठीक हो सकता है, दवा कड़वी है वो लेना नहीं चाहता। एक बांस के, बांस का बनाया और उसमें थोड़ा सा पतला सामने का कर दिया, उसमें भर दिया और बछड़े का गला पकड़ कर ऊंचा कर दिया, उसमें ढाल दिया जबरदस्त। और जब तक वो निगल नहीं गया तब तक पकड़े रखा। वैसे हम लोग परमार्थ के विषय में अंधे हैं, वो कह रहे हैं रघुनाथ दास, मैं अंधा अनभिक्षु, मैं चाहता नहीं था, किंतु सनातन गोस्वामी ने जोर पूर्वक वैराग्य रस से युक्त भक्ति रस हमारे मुख में डाल दिया, हमारे कानों में डाल दिया। अब मैं उनकी दया को समझता हूं कि उनकी दया क्या है। हम लोगों का भी ऐसे, चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही दया देने के लिए उस तक कहां कहां गए, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में कहां नहीं गए। ताकि मैं सस्ते रूप में, मैं जो दया की झोली ले आया हूं, कुछ फल लाया हूं, मैं बेचने के लिए वाराणसी में आया हूं। जब ये लोग नहीं लेते तो कम मूल्य में ही बेच दूंगा, तो श्रद्धा भी जदि होगी तभी मैं दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि माल अपना नॉल लौट आकर के ले जाऊं, और किस भर तुम नहीं लेंगे तो माल अपना लौटा ले जाऊंगा। किसको थोड़ी सी भी श्रद्धा है वो दे सकते और उनके परिकर हो बड़े तैयारी हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, लोग दुख को दूर करने के लिए और सुख को पाने के लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं। कर्मणि आरोहमानानं दुःखत्वं सुखाय च पश्चे पाप विपर्यासं मिथुनीचारिणां मृणाल। ये कह रहे हैं कविंद्र को, नेमि महाराज को नव जगेंद्र बतला रहे हैं, कभी हबी और सब इसमें हम बतला रहे हैं। कह रहे हैं संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख की इच्छा नहीं करता और उसके लिए चेष्टा नहीं करता। सभी प्राणी अपने अपने बुद्धि और शारीरिक परिश्रम से सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग सुख पाएं और हमारा दुख दूर हो जाए, समस्त प्राणी चाहते हैं। किंतु इसके लिए चेष्टा करने पर भी अभी राष्ट्र संघ के माध्यम से समस्त देशों के लोग एकत्रित हो रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं या लड़ाइयां रुक जाएं, सभी लोग शांति से रहें, सुखपूर्वक रहें, कोई दुखी न रहे। किंतु होता है उल्टा, हो नहीं रहा है, कोई समस्या ही नहीं इस चीज का। भारतवर्ष की स्थिति लीजिए, सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग सुखी रहें, और समस्या और जटिल से जटिलतर और जटिलतम होती चली चली जा रही है। क्यों होती जा रही है इसके लिए वो बतला रहे हैं, जो यथार्थ में सुख है और किस रीति से वो पाया जा सकता है लोग समझ नहीं पाते, ये तरीका नहीं है, उल्टा परिणाम हो जाता और दुख हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आए, उन्होंने देखा क्या समय कुछ विपरीत सा चल रहा है, समस्या क्या चीज है, खाने की कमी नहीं है, रोटी की भी कमी नहीं है, आदमी की कमी नहीं है, कमी तो किसी चीज की नहीं है, बुद्धि भी बड़ी है, मेडिकल इतनी उन्नति हुई है कि मैरिट में पुराने को बदलकर प्रत्यारोपण कर देते हैं दिमाग, हृदय गड़बड़ हो गया था हृदय में भी प्रत्यारोपण करने की विधियां सब आ गई, एक रसोई घर से लेकर और एकदम लोकसभा तक कैसी कैसी सब उन्नति हुई है, लोग चमत्कृत हो उठते हैं, बहुत उन्नति। किंतु एक चीज की साथ ही साथ में विडंबना की है, वो क्या, विश्व तो इन आधुनिक सब इन्वेंशन से जो दूर था वो निकट आ गया, एक गुलाब दूसरे के निकट में मुट्ठी में जैसे आ गया। पहले लोग सारा जीवन चल करके भी जिस जगह में दूर पर उतने दूर में नहीं आ सकते थे, अब 500 घंटे के अंदर में कहां अमेरिका, कहां इंग्लैंड और कहां उत्तरी ध्रुव, कहां दक्षिणी ध्रुव, वहां पर आदमी पहुंच जाते हैं। कम्युनिकेशन की कितनी उन्नति हुई, सब विषयों में ही उन्नति आश्चर्यजनक की हुई, लोग एक दूसरे के निकट आ गए, ये बात तो ठीक है, किंतु सब लोगों में परस्पर संघर्ष होने पर भी, सब निकट आने पर भी हुआ क्या, दो दिल एक परस्पर नहीं मिले, दिल की दूरी अलग हो गई। आप लोग सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, दो दिल नहीं मिले, जगत दुनिया आई, कलकत्ते में हम देखते हैं कभी बड़ी भीड़ होती है, इंग्लैंड और लंदन इत्यादि की या अमेरिका की मैं नहीं कर सकता, न्यूयॉर्क मैं नहीं गया, किंतु अंततः कलकत्ते में देखता हूं इतनी भी कि रोज 10-20-50 घटनाएं होती हैं, किंतु जब घटना हो जाती है तो कोई एक आदमी जो गिर गया उसको उठाने वाला, सहारा देने वाला, लाख तो आदमी उसमें चल रहे हैं, एक आदमी से एक आदमी मार दिया, वहां मारने पर थोड़ी सी सनसनी फैली, ठीक जैसा का तैसा, कोई सहारा देने वाला पूछने वाला नहीं जो क्या दिया, दुख में कोई सहानुभूति देने वाला नहीं। ये तो रही समाज की बात, अपने घर में भी पहले पति और पत्नी का हृदय जो निकट रहता था, बैंक बैलेंस अलग रहने लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि हृदय की दूरी हो गई, सबके लिए नहीं कर रहा, किंतु अधिकांश रूप में ऐसे है, स्त्री अलग बिजनेस कर रही है, पति अलग बिजनेस करता है, पुत्रों पर कन्याओं पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो धमकी देती है, ये धमकी देते हैं, हम नहीं रहेंगे एक साथ, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, पिता और पुत्र की दूरी और बढ़ गई है, जहां थोड़ा सा बड़ा हुआ पिता से मिलती नहीं, अरे घर में तो रहता है 2-4 घंटे रहता है, बाहर ना, बाहर की हाव भाव ऐसी बन गई, और वो विचार उनका विचार दास्यानुसी और पुराना विचार उनका हो गया, और हम अब नए हो रहे हैं, अब नया और पुराना दोनों का बोतल में एक बोतल में नहीं चलता, दुख की ये समस्या है। आत्मा की जो खुराक थी आत्मा की खुराक समझ रहे हैं ना, आत्मा की वो खत्म हो गई और शरीर का खुराक बढ़ गया। शरीर का वैभव, शरीर का मंडन, शरीर का श्रृंगार और शरीर की भूख काम बढ़ गई और आत्मा की भूख धीरे 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 नहीं कुछ मिलने से वो शांत होकर के आत्मा दुर्बल हो गई और शरीर जो तामसी तामसिक भावनाएं बढ़ गई। ये जीत की समस्या है। प्रेम देखने को कहीं नहीं मिलता, बहुत कम जीर्ण ही प्रेम मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा ये तो बड़ी विकट समस्या है। इसलिए उस प्रेम का प्रचार करने के लिए ये जीव भगवान से प्रेम करे, सब में प्रीति रहे, सभी लोग परमात्मा को समझे, क्षुद्र स्वार्थ में न रहे। आदमी अपने अपने एक व्यक्ति के वैयक्तिक स्वार्थ में सभी लग गए, सामूहिक स्वार्थ की बात कोई कल्पना नहीं करता है। आज हमारे राष्ट्र को देख लीजिए, विश्व के राष्ट्र को देख लीजिए, सर्वत्र एक ही दशा है। इसलिए चैतन्य महापुरुष जी ने क्या किया, नाम के माध्यम से उन्होंने प्रेम की माला सबके गले में पहनाने की चेष्टा की। नाम एक बिना पैसे का साधन है। कोई भी व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो, नया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वो भगवान का नाम कर सकता है। इसलिए नहीं कि दरिद्र लोगों के साथ में बैठ करके मैं धनी हूं इसलिए भगवान का नाम नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। पैसा खर्च होगा नाम में, पैसे खर्चे का कोई प्रश्न नहीं। आप लोग यहां पर सब आए हैं, अब ये 1,00,000 रुपए का प्रसाद बांट दें तो वो दूसरी बात है। कोई तुलसी का पत्ता भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेगा, बस उसी से सब। कोई भी उसके लिए नहीं आता, वो नाम के लिए आता है, इसलिए इसमें खर्च नहीं। बुद्धि की विशेष जरूरत है नाम करने में, कोई भी बुद्धि की जरूरत नहीं। हंसते बैठते उठते चलते फिरते श्रद्धा हो न हो किसी रूप में भगवान का नाम लिया जा सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोगों में परस्पर प्रीति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा। एक बात अच्छी तरह से समझेंगे, यह प्रेम जीव का जीव के प्रति नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जीवों के प्रति प्रेम किया जाए, किंतु यह सिद्धांत एकदम संपूर्ण रूप से गलत है। जो प्रेम नहीं जानते हैं इसलिए वह ऐसा कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दलील देते हैं कि जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो जीवों के प्रति यदि प्रेम है तो वो लोग देखते हैं क्या करते हैं, स्वयं मुर्गी को काटते हैं और खाते हैं, तो जीव को प्रेम कहां रहा। सांप से प्रेम करो तो या बाघ से, यह संभव है, खा जाएगा, इसलिए प्रेम न करने जाओ सबसे। यह प्रेम केवल मात्र भगवान के प्रति होनी चाहिए, उनके प्रति दया का भाव हो, उनके प्रति मैत्री का भाव हो सकता है, उसके माध्यम से प्रीति उनके प्रति हो। यह प्रेम केवल मात्र भगवान के प्रति होगा। यदि वह जीव के प्रति करेगा तो वो काम भावना हो जाएगी। काम में और प्रेम में अंतर है। प्रेम निस्वार्थ अपने सर्वस्व दे देना पड़ता है, ये भगवान के चरणों के लिए ही संभव है, क्योंकि हम उनके अंत हैं। जीव के लिए यह संभव नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। और जीवों के प्रति प्रीति भरी मैत्री, सेवा भरी मैत्री और दयापूर्वक मैत्री। और जो लोग बहिर्मुख हैं उनको इसलिए उनसे कोई व्यवहार न रखे कि व्यवहार करने में आपको गड़बड़ी होगी, इसलिए उनसे सावधान करिए। और संभव आप में शक्ति है तो उनके प्रति भी व्यवहार ऐसा कीजिए, यदि आप सुधार सकते हैं तो। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताया है। इसमें यदि आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो आप लोग प्रश्न ही कर सकते हैं। केतन महाप्रभु के समय में बुद्धिमंत खान नाम के एक जमींदार हो गए। चैतन्य चैतामृत में या श्री चैतन्य भागवत में ये उपाख्यान आया। जब चैतन्य महाप्रभु के समय में हरिदास ठाकुर जी हुए, वो मुसलमान कुल में पैदा हुए और बचपन से उनकी हरिनाम में रुचि लग गई। 300,000 हरिनाम करते थे, 100,000 नाम उचित स्वर से उच्चारण करके करते और 200,000 नाम ऐसा करते जो मन ही मन में करते, अपने सुन सकते हैं इस रूप में करते या मन ही मन करते या अपने आप सुन सके इस रूप में करते। इतना नाम करना सहज नहीं है। खाना पीना और अपना स्नान और सब दैनंदिन क्रिया करते हुए और ये 300,000 नाम करना और मन लगा करके, मन कहीं नहीं जाए, बड़ा भारी कठिन था। इसी ऊर्जा के कारण हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक बेस्या को नियुक्त किया था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। किंतु 300,000 वो उनका नाम उच्चारण सुन करके एकदम परम साध्वी परम संत बन गए और उसके दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु लोग उनके यहाँ जाने लगे। इतनी बड़ी वो हो गई। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम यह, मैं तो चला जाता पहले दिन तुम्हारी सभी, किंतु हरिनाम की महिमा तुमको दिखलाना था इसलिए मैं रह गई। अब तुम इसी स्थान पर आ जाओ और ये स्थान मैंने तुमको दे दिया। घर में तुमने जितने रुपए कमाए हैं वो सबको दान, जिसको इच्छा उसको दे आओ और केवल यही कपड़ा जो तुम पहनी है साधारण इसी को पहन करके आ जाओ। बस वो सब कुछ दान देकर घर का सब कुछ कपड़ा लत्ता रुपया पैसा आभूषण सब कुछ देकर के और उस स्थान में आ गई। न कि ये तुलसी का चबूतरा है, बस इसी की रोज तुम परिक्रमा करना, पानी लेना और इसकी सेवा करना और तुम हरिनाम करना। खाने पीने की चिंता मत करना, वो तुम्हारे पास में बहुत आएगा, किंतु तुम उतना ही रखना जितना तुमको जरूरत है और बाकी लौटा देना। हरिदास ठाकुर उसको रख करके वो चले गए और वो हरिनाम करने लगे। बड़े बड़े लोगों ने सुना और सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े संत लोग थे, वैष्णव लोग थे, सभी लोग आने लगे और कुछ कुछ हाथों में फल मूल जैसा जिसका है वो लेकर के आने लगे। वो उसमें जितनी जरूरत होती उतनी रख लेती और बाकी सब लौटा देती, नहीं रखती और निष्किंचन दीन ही होकर के वो नाम करने लगी। इस तरह से बंगाल भर में उनका आदर हो गया। वो जो रामचंद्र खान था, इस पाप के कारण, संतों का विरोधी होने के कारण, महाप्रभु का विरोधी होने के कारण वो कुछ और बढ़ गया। वो सुबुद्धि राय का है, तो सुबुद्धि राय के एक, मैं दूसरी में चला गया। सुबुद्धि राय नाम के एक जमींदार थे, वो हुसैन का बादशाह उनके यहाँ पहले राज कर्मचारी था, उनके यहाँ काम करता था। उसको किसी चीज का ठीका दिया, ये काम करना है, ये जमींदारी तुमको देते हैं, उसमें से शुल्क लेकर और फिर हमको उसमें से 100,000 रुपया दे दें और बाकी तुम्हारा रुपया रहेगा। वो 100,000 के बदले में 10,000 रुपया उठाया और इनको एक पैसा नहीं दिया और सभी खा गया। उन्होंने उसको बुलाया, कहा कि तुम सब रुपये खा गए और तुमने हमको दिया नहीं। उस पर कुछ बिगड़े और उसको राज्य से हटाया नहीं नौकरी से, किंतु उसको कोड़े लगवा दिए और कोड़े लगने से उसको घाव हो गया, फिर कुछ दिनों में सूख गया। बाई चांस वही अब बादशाह बना, इनके ऊपर वाला भी चला, इसके ऊपर भी हो गया। ये तो उसके छोटे राजा थे और वो उनसे ऊपर का हो गया। अब वो जो बादशाह हो गया बंगाल का, तो एक दिन स्नान कर रहा था और उसकी बेगम उसको स्नान करा रही थी। तो स्नान कराते कराते उसने देखा जी पीठ में दाग है। तो उसने कहा जी से आपके पीठ में ऐसा दाग क्यों हो गया? तो तुमको कोई जरूरत नहीं, तो हम जल्दी से स्नान करा दो, हम चले। उतारने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार वो जिद करने लगी कि बतला दीजिए कि आपको कैसे दाग है। अंत में बाध्य हो करके उनको बतला, वो कहा उसने यदि नहीं कहेंगे तो अभी मैं मरती हूँ विष खा करती हूँ, विष मरने से अच्छा तुमको बतला देगा। उन्होंने बताया कि जब मैं नौकरी करता था पहले इनके यहाँ से बुद्धि आई थी तो इन्होंने मालगुजारी वसूल करने के बाद मैं सब खा गया इसलिए इन्होंने हमको दंड स्वरूप एक पुड़ा मरवाया था और फिर बाद में हमको क्षमा कर दिया और उसी काम में लगा दिया और उसके बाद ही मैं किसी प्रकार से बादशाह हो गया, इसलिए इसी सहायता से बादशाह हुआ हूँ। उसने कहा जैसे घोड़ा मरवाए अब इसका तो प्राण आपको लेना पड़ेगा, प्राण दंड देना पड़ेगा, किसी प्रकार से इनको मारना है, बहुत एकदम जीत कर दिया। अंत में वो प्राण लेने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने उनको बुलाया और कहा जी अच्छा एक बात करो। उन्होंने बथने में पानी लिया और लेकर के खुद पिया और उस पानी को उनको पिला दिया, मुख में लगाकर पिया तो उन्होंने नहीं मुख में लगा दिया। अब उस समय की रीति ऐसी थी यदि कोई मुसलमानों का पानी छुआ हुआ पी लिया तो वो मुसलमान हो गया, अब उसके लिए प्रायश्चित करके तब हिंदू होना बड़ा भारी कठिन था, अब उनको तो मुसलमान बना दिया। अब ये वहां से चले वाराणसी गए, भाई मैं तो हमको तो मुसलमानों ने पानी सजा दिया और मैं तो मेरी जाति चली गई, अब कैसे हमारी जाति बनेगी। सुना कि हाँ एक तरह से बन सकती है, एक किलो घी आग में खौलाया जाए और जब वो खौलने लगे तो उसको उस बर्तन से लेकर के आपके मुख में डाल दिया जाए तो आप शुद्ध हो सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं जी। फिर गए मिथिला में, वहां के पंडितों से जाकर के कहा, उन्होंने कहा हाँ आप शुद्ध हो सकते हैं यदि लाल एक लोहा गला दिया जाए और गला करके आपके मुख में दे दिया जाए, लोहा गला हुआ फॉरन हीट से भी गर्म करके, तो आप शुद्ध हो सकते हैं, मतलब आप तो मर जाए, बिना मरे हुए शुद्धि नहीं हो सकती। इसी तरह से जहां जहां भी गए किसी ने उनको शुद्ध करने को नहीं कहा, शुद्ध हो सकते। अंत में बड़े दुखी थे, चैतन्य महाप्रभु उस समय वाराणसी के लिए आ रहे थे या वहीं से उनके पास में गए, महाप्रभु जी को जाकर के अपनी बतलाई। उन्होंने कहा आत्मा हिंदू और मुसलमान ये सबसे ऊपर है, आत्मा कभी भी न हिंदू है न मुसलमान है न क्रिश्चियन है न ईसाई है न बौद्ध है, उसका केवल यही मतलब है भगवान का सेवा करना, यथार्थ में तुम कोई अपवित्र ही नहीं हुआ, तुम शुद्ध ही है। तुम्हारे मन में उस पानी पीने से अहंकार बढ़ा न दीनता आई, तो दीनता आई, अहंकार नहीं आया ना तो नहीं आया, तो तुम्हारा मन कैसे मलिन था। तुम्हारे अंदर में क्रोध हुआ नहीं तो काम क्रोध लो मद मोह मास्टर जिसे मन मलिन होता है ये कुछ हुआ तो नहीं तो, तो तुम्हारा मन कहां मलिन हुआ, तुम्हारी जाति कहां गई, तुम्हारी तो ठीक है। तुम एक बात करो बोलो तो, तुमने कहा जब बतलाइए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, बोलो बस बोला उसने और बोलते कहा तुम अब संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, तुम्हारे अंदर में कोई भी अब कुछ नहीं है, सब दोषों से समस्त पापों से सबसे तुम शुद्ध हो, अब यहां से उस समाज में मत जाओ जो तुमको इस प्रकार से कहते, अब यहां से तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में जाकर के वहां पर बहुत एक बड़ा मंदिर है कृष्ण की जन्मभूमि पर, उसमें बड़ा भारी विराट मंदिर था वहां पर, उसी को औरंगजेब ने आजकल तोड़वा करके उसी के गर्वे और मिट्टी से और चूना और ईंटों से मस्जिद खड़ा कर दी है, जैसे कि वाराणसी में श्री मंदिर और अयोध्या में राम का मंदिर, वहां पर मथुरा में भी ऐसे बहुत बड़ा भारी विशाल मंदिर, वहां जाना और वहां पर देश विदेशों से संत लोग आते हैं, गृहस्थ भक्त लोग आते हैं भगवान का भजन करने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए। तुम निचली सीढ़ी पर बैठना और पहले दर्शन करके आकर के और यही हरि नाम करता रहना, और निचली सीढ़ी पर सब लोग जब जाएंगे उनके चरणों की धूली लेकर के अपने सिर पर लगाया और तुमको दो 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 एक एक पैसे दे देंगे। मैं जमींदार था जी, तुम उसको फेंक मत देना, दो दो एक पैसे जोड़ लेते हैं ले लेना, अपने लिए मत लेना। जो दूर दूर से संत लोग आएंगे, वैष्णव आएंगे, निधि आएंगे, जिनको कुछ जरूरत है, उनके खाने पीने रोटी और तेल और सब चीजों की व्यवस्था के लिए तुम उनको दे देंगे। और तुम घर में माधुकरी मांग करके और किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करके बस हरे कृष्ण ये करता रहना, और तुमको और कोई साधन इत्यादि की जरूरत नहीं। इसी नाम के साधन से तुमको जो कुछ भी मिलना है इस जगत में, पर जगत में, वो सब कुछ खुद साध्य साधन जे कुछ सफल हरि नामे मिली दे सफल, हरि नाम के द्वारा सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उनको दिखता है। हरिदास ठाकुर को तो जानते ही हैं। हरिदास ठाकुर जी से एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, प्रभु मैं देखता हूं कि जगत में बड़े कुकर्मी लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं कम हैं, कुकर्मी लोगों की संख्या भी, बुरे कर्म करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं, परस्पर लड़ते हैं जंगली जानवरों जैसे, वो तो अपने पंजों से नोचते बकोचते हैं, और ये क्या करते हैं, एक अटम बम हाइड्रोजन बम ऐसा फेंकेंगे जो कुरिशिमा और जापान का वो सब क्या, और इराक सिरा को देखो मैंने कुछ दिनों में ठंडा कर दिया। ये ऐसे लड़ते हैं, लाखों लोगों का प्राण बिना कारण ही ले लेंगे, ऐसे ये जंगली से भी जंगली है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है जो उनका उद्धार हो। पशु पक्षी भी ऐसे हैं, तृणलता भी ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, किंतु उनको प्राण है। जगत में दो प्रकार के वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं। जिसमें अनुभव की शक्ति है और दुख सुख की संवेदना है, दुख सुख का अनुभव कर सकता है और स्वतंत्र इच्छा शक्ति हो, ये बात की है। दो प्रकार के वस्तुएं हैं, एक जड़ एक चेतन, जिसमें फ्री नोइंग एंड विलिंग हो, स्वतंत्र इच्छा शक्ति और दुख सुख की अनुभूति जिसमें हो वो तो चेतन। इच्छा शक्ति माने क्या, मैं चलूंगा, मैं देखूंगा, मैं ये खाऊंगा, मुझे इसे दुख हो रहा है, मुझे सुख रहा है, ये सब चीजें जो हैं जिसमें फ्री स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति है उसको कहते हैं चेतन या चिन्मय, और जिनमें इन चीजों का अभाव है उसको कहते हैं जड़। ये जड़ है, इसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति नहीं है। हमारे अंदर में सुख दुख की अनुभूति और अनुभव भी है, इच्छा भी है, किंतु इस शरीर में नहीं। शरीर के अंदर में एक आत्मा नामक एक वस्तु है, उसके अंदर वो चेतन है। ये शरीर चेतन नहीं है, मन भी चेतन नहीं है, वो इससे सर्वथा पृथक है। हम कान से सुनते हैं किंतु कान नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। हम पैर से चलते हैं, पैर नहीं चलता, हम आत्मा के वजह से चलते हैं। मन के द्वारा हम अनुभव करते हैं ऐसा सोचते हैं, किंतु मन के द्वारा अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा इसके अंदर में है, इसलिए आत्मा अनुभव करती है, आत्मा चेतन है और ये सब चीज जड़। और समस्त चेतनों की मूल चेतन है वह है भगवान, वह है परमात्मा। इसी आत्मा का परमात्मा से जबकि मिलन होगा और उसके प्रति इसकी सेवा और स्थिति होगी, तभी वो सुखी रह सकता है। अन्यथा किसी भी उपाय से संसार के जितने भी कार्य हैं वो सुखी नहीं रह सकता है। मैं किस विषय पर भी बोल रहा था, आरंभ किया था, उनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी ने पूछा तो वो कहते हैं जैसे ये घास है, पेड़ पौधे हैं, वो जड़ है कि चेतन है? उसका ऊपरी आकार तो है जड़, किंतु उसके भीतर में वैसा ही चेतन है जैसा हमारे भीतर में है? ये आजकल लोग अंडे खाते हैं, अंडे भी हमारे जैसे ही चेतनता है, उसमें भी प्राणी है, हिरण को मार करके खा जाते हैं, गायों को मार करके देशों में विदेशों में खाते हैं, उसके अंदर भी हमारे जैसे ही, पौधों में भी वैसे ही आत्मा है, तो इन लोगों का उद्धार कैसे हो जो पेड़ पौधों में आत्मा है? महाप्रभु जी ने तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी ने बतलाया, उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार सिर चौर जीवर खंडाई और संसार। आपने जो उच्च संकीर्तन प्रचार किया है इसके द्वारा सिर और चर जितने भी प्राणी हैं, जड़ और जंगम, चलने वाले और जो स्थिर रहने वाले जितने भी प्राणी, जिनमें चेतनता है, अनुभव शक्ति है, वो सुनते हैं, पेड़ भी बात सुनते हैं, समझते हैं। एक कुठार उस पर लगा दीजिए, सारा पेड़ कांप जाएगा। उनमें भी चेतनता है, उपलब्धियां हैं, किंतु वो व्यक्त हम लोगों के सामने नहीं कर सकते, अपने जातियों में वो व्यक्त कर सकते। जैसे बंदर है, बंदर की बोली है, उनको अभी मारने जाइए वो ऐसे किंकारी मारेंगे जो लाखों बंदर एकत्र हो जाएंगे और आपको चलना फिरना कभी मुश्किल कर देंगे। चींटियों में कितनी एकता होती है, लाखों चींटियां एक तरफ से चलती हैं। इस तरह से पशु पक्षियों में भी बुद्धि होती है। कुछ तो ऐसे प्राणी हैं जो भविष्य की बातें जान लेते हैं, कुत्ते हाथियां ये सब समझ लेते हैं, सियाल ये समझ जाते हैं ये मरने वाला है, बस उसके पहले ही रोना आरंभ कर देंगे, वो समझ जाते हैं। हंस में तो ऐसी बुद्धि है, पानी और दूध को अलग अलग कर देंगे, हमारे लिए यंत्र चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए, उनमें भी बुद्धि होता है। कुत्ते ऐसे हैं, बीस भरी कोई चीज दे दो तो सहज में वो नहीं खाएंगे, वो सुन करके समझ सकते हैं। हम लोगों के लिए यंत्र चाहिए, इसलिए उन लोगों को दिए। कान को सबको भगवान ने दिया है, उच्च संकीर्तन इसलिए आपने प्रचार किया, जो चलते फिरते रहे, जो हरिनाम करते हुए चल रहे हैं, उनके कानों में पड़ने से वहीं से उनका उद्धार हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन पूरी धाम से, चलते चलते जब गंभीर जंगल में आए, पशु पक्षी सांप बाघ हाथी मृग झुंड के झुंड विचर रहे थे उस जंगल में, और जो प्रेम से उन्होंने धुनी लगाई हरे कृष्ण की, बस समस्त जीव ही कृष्ण 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 करने लगे। हाथी दोनों पैरों पर टेक दिया आपने को, आंसुओं से हरे कृष्ण अपनी भाषा में बोलने लगे, बाघ बोलने लगे, मृग बोले, एक साथ में सभी चलने लगे। हरष्कानंद नाम के एक महाप्रभु जी के परिकर हो गए। महाप्रभु जी से श्यामानंद प्रभु हुए हैं, श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य ये थे। ये एक बार किसी सरोवर में जंगल में स्नान कर रहे थे तो 10-15-20 हाथियों का एक झुंड आया और आते ही पर छपता, उन्होंने पानी लिया और हरे कृष्ण कहा करके और उनके मस्तक को मारा, बस एकदम सुर उठा करके सभी एकदम खड़े हो गए और हरे कृष्ण करने लगे और आंख से पानी की धारा चलने लगी। उन्होंने खूब पसंद किया, ऐसा सब देखा जाता है। पशु पक्षी भी कीट पतंग भी, हम चल रहे हैं टहलने जा रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे नहीं हरे नाम करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वहां पर जितने पेड़ हैं पौधे हैं घास है, विशेष करके गायें और कुछ जानवर ऐसे हैं जब बजाते हुए कुछ हरे कृष्ण करें ना तो कान खड़ा करके ऐसा कर करके करते हैं और सुनते हैं उन्हें, उधर बिधर करके दौड़ने लगते हैं। कुछ कुत्तों को हमने देखा है जहां कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मार करके भगा दीजिए तभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे नवदीप धाम की परिक्रमा में लाखों लोग जब परिक्रमा करते हैं उनके साथ में कुछ कुत्ते हो जाते हैं, प्रसाद दिया तो खाएंगे, एकादशी के दिन प्रसाद दिया जाएगा तो नहीं खाएंगे, कैसे समझ जाते हैं। ये शिवानंद सेन नाम के एक भक्त थे, वो प्रतिवर्ष में जाते थे रथ यात्रा के समय में पूरी धाम में, तो जिसमें जा रहे थे सैकड़ों लोग, और उस समय में कुत्ता उनके पीछे लग गया और वो कुत्ता उनके साथ में प्रसाद देते थे, एकादशी के दिन नहीं खाता, और किसी कारण से उसको नदी से पार नहीं कराया, अपने लोग तो पार हो गए, और उसको कुछ डांट दिया किसी ने, वो आगे चला गया महाप्रभु उस पास पुरी में, ये लोग रह गए पीछे, और वो जाकर के ओ करता हुआ बस उनके चरणों में एकदम प्राणित हो गया। महाप्रभु ने कहा ये कोई महापुरुष है, कुछ शासन बाकी रह गया और ये हरिनाम करता करता हुआ यहाँ आया, अब इसकी सदगति हो गई। फिर उसका उसी प्रकार से वैष्णव के अनुसार से उसको प्रसाद के द्वारा सबको दे करके उसका साध्य भी करा दिया वैष्णव का। तो ये उच्च संकीर्तन के लिए कुछ लोग कहते हैं आपका भगवान क्या बहरा है, जो जो से नाम कर रहे हैं चिल्ला करके चिल्लाने की क्या जरूरत है, विशेष करके वैष्णव लोग महाप्रभु के परिकर या उनके रास्ते पर जो चल रहे हैं मृदंग जरूरी रख लें और कुछ करताल रख लेंगे, मृदंग नहीं भया तो करताल रख लेंगे और 10-5 मिल करके और जोर से हरिनाम करते हुए रास्ते पे चलेंगे, इधर चलेंगे उधर जाएंगे, उनका काम ही यही है। तो कहेंगे तुम्हारे भगवान क्या बारे हैं जो सुनते नहीं है, क्या मन मन में नहीं समझेंगे, कहते ये पति का आदेश है इसलिए हम उसका पालन करते हैं, ये प्रभु स्वयं कहते हैं कि हमारा नाम उच्चारण करके करो इसलिए हम करते हैं, हमारा भगवान न तो बहरा है न कुछ है, हम उसकी कृति के लिए वो जैसा कहता वैसा ही हम करते हैं। इसलिए उच्च संकीर्तन की महिमा मणिमन जो करते हैं उससे 1000 गुण अधिक, मणिमन जो नाम करता है उससे उपांशु जब श्रेष्ठ है, उपांशु माने क्या, जरा हरे कृष्ण अपने सुनने उसको उपांशु जब करते हैं, और इस जब से हरे कृष्ण उच्चारण करके लाउडली और जोर से करने से उसका 1000 गुना से 1000 गुना और भी लाभ होता है, अपना भी होता है दूसरे का भी होता है, जप करने से अपना कल्याण होगा और कीर्तन करने से लोग जो कुछ सुनेंगे लाख लोगों का कल्याण होगा, इसलिए उस संकीर्तन की चेतन महाप्रभु ने भी बनाई और उसका अपने भक्तों के द्वारा सर्वत्र ही प्रचार किया, और इसी नाम के माध्यम से उन्होंने प्रेम का प्रचार किया समस्त विश्व में, आज उन्हीं की कृपा से आज देखे विश्व में सर्वत्र ही नाम की में रशिया जैसे कंट्री में भी हरिनाम का प्रचार, चीन में भी धीरे धीरे लोग प्रवेश करते और अमेरिका और ब्रिटेन तो वो आर्थिक देश है, वहां पर तो होगा नहीं, वहां पर तो लोग करते ही है, इसलिए नाम की महिमा सदस्य प्रचार है, कहां नहीं मंदिर है, कहां नहीं भागवत और गीता इत्यादि का संश्लेषण किया। आज मेरी इच्छा थी मैं आप लोगों को चैतन्य महापुरुष की दृष्टि से गीता का क्या तात्पर्य है उसके 2-4 श्लोकों की व्याख्या करके आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा नाम की तरफ में बढ़ गया, मैं कुछ गीता के ऊपर में थोड़े से एक विहंगम दृष्टि से विचार कर रहा हूं। गीता भाई की तात्पर्य वही नाम संकीर्तन से है, उसमें भी नाम संकीर्तन की महिमा है। कलयुग में आप कुछ भी साधन कीजिए मना तो नहीं, किंतु नाम संकीर्तन के माध्यम से कीजिए, अर्चन भी करना है तो नाम कीर्तन करते हुए, यदि ध्यान भी करना है तो नाम के माध्यम से, यदि और कुछ करना है साधन तो नाम के महिमा से, नाम को छोड़ करके आपका कोई भी साधन कार्य नहीं करेगा, फल नहीं देगा, इसलिए नाम संकीर्तन सहज अन्य आश्रित में सब समय करना चाहिए। मान लें कि आपको घोर की कोई विषय की चिंता है, आप उस समय दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, ध्यान हो सकता है उस समय नहीं होगा, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, किंतु हरिनाम कीर्तन ये हो सकता है, आपकी चिंताओं से भी छुटकारा वो दे देगा, जो से हरिनाम संकीर्तन करने लग जाए बस देखे वो चिंता दूर हो जाएगी, इसलिए नाम संकीर्तन को सबसे बड़ी कलयुग का सबसे प्रधान इसी को कहा गया है। कुछ लोग ध्यान इत्यादि को बतलाते हैं किंतु ध्यान होना संभव नहीं है, अर्चन करना, अर्चन करने में चित्त को स्थिर करना होता है, मानसिक स्थिति शांत हो, शुद्ध कोई चीज हो, शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध रूप में और सब चीजें, आजकल कलिकाल में ना तो शुद्ध घी मिलेगा ना कोई और चीज मिलेगी,
और ना तो चित्त संभव है, इसलिए कर्म का अर्चन भी बंद हो जाएगा। विधर्मी लोग इसको गड़बड़ कर देंगे, इसलिए हरिनाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाप्रभु जी ने इसी का प्रचार किया। हम थोड़ा सा गीता के ऊपर में लेते हैं। गीता के संबंध में अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं थे, अर्जुन पूर्ण रूप से मुक्त जीव थे, भगवान के परिकर थे। ऐसा मत समझिए कि अर्जुन को उपदेश देने के लिए गीता है, अर्जुन को कोई माध्यम बनाया गया। सर्व उपनिषद हो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो भक्त सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत्। इसका अर्थ ये उपनिषदों का है, ये श्लोक जो कह रहा हूं उपनिषदों का है। इसमें बतला रहे हैं उपनिषदों का वेद हैं, ये गाय का रूप है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा, गाय को दुहने वाले कौन है? कृष्ण है। उपनिषदों का सार जीवों के लिए जो अमृत है उसका गाय रूप से उपनिषद से कृष्ण दोहन कर रहे हैं। अपने लिए ग्वाला अपने लिए दूध निकालता है न किसके लिए, दूसरों के लिए।